أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآل محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا منصورنا علی القوم الكافرین. ناظرین کرام، قرآنی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج صبر کی دعا کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ دنیا تزاحم اور تضاد کی دنیا ہے. یہاں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے تو اس کے لیے صبر کرنا بہت ہی ضروری ہے. اس دنیا میں صبر کے بغیر کامیابی کی کوئی معنی نہیں بنتی، صبر کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر ایک اپنی فکر اور اپنی نظر رکھتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنا مقصد ہے، تو پھر یہاں پہ ٹکراؤ ہوگا، تعارض ہوگا، تضاد پیش آئے گا. جو بھی چاہتا ہے کہ کامیابی تک رسائی حاصل کرے تو اسے مشکل مراحل طے کرنے پڑیں گے اور صبر کرنا پڑے گا. خالق کائنات قرآن مجید میں انسانوں کو خسارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے. اس خسارے سے وہی بچ سکتے ہیں جن کے اندر یہ چار خصوصیات پائی جاتی ہوں: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں. ایمان اور عمل صالح کے بعد صبر کی تلقین کریں اور حق کی تلقین کریں. یہ حق کی تلقین اور صبر کی تلقین بہت اہم ہے، خاص طور پہ صبر کی تلقین. یعنی اگر کوئی خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اسے خود صبر کرنا پڑے گا، بلکہ اپنے دوسرے ایمانی بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی پڑے گی. اور یہ صبر اتنا اہم ہے کہ خالق کائنات خود اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم دے رہا ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے حبیب تم بھی اسی طرح صبر کرو جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبر صبر کر چکے ہیں. صاحب شریعت انبیاء رسول صبر کر چکے ہیں، اسی طرح تم بھی صبر کرو. صبر کیے بغیر یہ اہداف، یہ مقاصد، یہ اغراض حاصل نہیں کیے جا سکتے. اور ایک مرتبہ تو حد ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، جو اکابر میں سے تھے، رؤسا میں سے تھے، بڑے سرمایہ دار اور مالدار لوگ تھے. وہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، ہم بھی آپ کی دعوت میں شامل ہو جاتے ہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ان غریبوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں، آخر ہم امیر ہیں، ہم دولت والے ہیں، ہمارا حساب و کتاب ان سے جدا ہے، ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ ہم امیر لوگ ان غریبوں کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھیں، ایک جگہ پر بیٹھیں. اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جہاں سب جو ہے وہ نیچے زمین پر بیٹھا کرتے تھے، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم بھی ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھیں، غریبوں کے ساتھ. آخر ہم امیر ہیں، پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ہمارا حساب ان سے الگ ہونا چاہیے. یہاں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو دن اور رات، صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. انہیں غریب ہیں تو کیا ہوا، ان کا رابطہ خدا کے ساتھ بہت اچھا ہے. آپ ان کی ظاہری حالت کو نہ دیکھیں، آپ ان کی دنیاوی حالت کو نہ دیکھیں، آپ ان کے ایمان کو دیکھیں، خلوص کو دیکھیں، باطنی نیت کو دیکھیں، پاک قلوب کو دیکھیں، صحیح اور سالم ضمیروں کو دیکھیں. یہ نقصان کا سودا ہوگا کہ امیروں کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے ان خدا پسند لوگوں کو، ان خدا کے عابد اور پرہیزگار بندوں کو اپنے آپ سے دور کرو. نہیں، ان کے ساتھ مل کے صبر کرو، انہی پر صبر کرو، یہی تمہاری دعوت کو پھیلائیں گے، یہی تمہارے پیغام کو آگے بڑھائیں گے، یہی آپ کے مشن کو لے کر آگے چلیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا چرچا کریں گے اور اسلام کی تبلیغ کریں گے. یہ صبر کی اہمیت ہے. ان دونوں آیتوں سے جو خاص طور پہ رسول اللہ کو حکم دے رہی ہیں کہ آپ صبر کریں، اپنے ماننے والوں کے ساتھ مل کے صبر کریں، سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کے بغیر منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا. اس دنیا کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا. یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز معجزے سے حل کی جائے، نہیں، بلکہ اسباب و وسائل کے ذریعے سے، جس طرح یہ کائنات کا نظام اور سسٹم ہے، آہستہ آہستہ تدریجی طور پر یہ منزلیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی اور کامیابیاں انسان کو نصیب ہوتی جائیں گی. صبر ان کامیابیوں کا پہلا زینہ ہوا کرتا ہے. پھر جب انسان صبر کی ان فضیلتوں کی طرف، صبر کی ان منزلتوں کی طرف نگاہ کرتا ہے، ان نعمتوں کو دیکھتا ہے جو خالق کائنات صبر کرنے کی وجہ سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، تو پھر صبر کرنے والوں کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے. خالق کائنات قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کی مدح کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو خالق کائنات ان کا اجر دیں گے اور بے حساب اجر دیں گے. کوئی حد معین نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنے فیصد ہوگا یہ معین نہیں ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے ان کو خالق کائنات اجر عطا فرمائے گا. اور یہ صبر ہی ہے جو انسان کو اعلیٰ ترین مراتب تک لے جا سکتا ہے، افضل ترین عہدوں تک پہنچا سکتا ہے، یہاں تک کہ آئمہ علیہ السلام کی امامت جو خالق کائنات نے ان کو عطا کی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے. لما صبرو، جب انہوں نے ہماری راہ میں پہنچنے والی مشکلات پہ صبر کیا تو ہم نے انہیں امام بنا دیا. اب یہ نہ کسی کی بلامت سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کی لالچ میں آتے ہیں، نہ کسی کی دھمکی سے خوف کھاتے ہیں، ان کو کوئی بھی چیز خدا کی راہ سے، خدا کی راہ کی طرف دعوت دینے سے نہیں روک سکتی، صبر کی بنیاد پہ. اور صبر کرنے والے جب وارد محشر ہوں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر جو تم نے صبر کیا اس دنیا میں، چند دنوں کی مشکلات پہ تم نے صبر کیا، خالق کائنات اب تمہیں دائمی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اب خدا تمہیں ہمیشہ والی نعمتیں عطا کر رہا ہے، یہ نتیجہ ہے تمہارے صبر کا. اور خالق کائنات دوسری جگہ پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور بہ ضرور اجر دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا. کتنا اجر دیں گے؟ ارشاد ہو رہا ہے بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، जिन्होंने उतना अमल किया था उससे बहुत ज़्यादा बेहतर उनको अजर और सवाब देंगे उनके सब्र करने की बुनियाद पर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अस्सब्र निस्फुल ईमान, सब्र निस्फ ईमान है, ईमान का अहम जुज़ और हिस्सा है। सब्र के बगैर ईमान की कोई माना नहीं बनती। इसलिए बाद रिवायात में ये भी जिक्र किया गया है कि जो सब्र नहीं करता गोया उसके पास ईमान ही नहीं है, वो गोया के खालिक कायनात की तखलीक पे ईमान ही नहीं रखता कि जो खालिक कायनात ने इस दुनिया में निज़ाम बनाया है उसमें सब्र करना एक अहम बुनियादी जुज़ और हिस्सा है ईमान का। दूसरी जगह पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अस्सब्र कंज़ुन मिन कुनूज़िल जन्नत, सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बेहिश्ती खजाने मिलें, उनमें से अहम खजाना सब्र का है। जिस इंसान को, जिस मोमिन को इस दुनिया में सब्र की तौफीक हो रही है गोया कि उसे बेहिश्ती खजाने मिल रहे हैं, गोया कि उन्हें जन्नत का एक खजाना मिल रहा है, गोया कि वो अपने आप को जन्नती बनाने का मुस्तहिक और हकदार बना रहे हैं। इसी बुनियाद पे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं अल जन्नतो महफूफतुन बिल मकारहे व सब्र, जन्नत छुपी हुई है, घिरी हुई है मुश्किलात और सब्र में। फमन सबर अल मकारहा फिद दुनिया, जो भी इस दुनिया में मुश्किलात पर सब्र करेगा, परेशानियों पे सब्र करेगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मुश्किलात पे सब्र करना और जन्नत में जाना एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। अगर इंसान खुदा के लिए सब्र करता है, राह खुदा में पेश आने वाली मुश्किलात पे सब्र करता है तो खालिक कायनात उस दुनिया में उसे जन्नत अदा करेगा। यानी इस दुनिया और उस दुनिया का आपस में एक राबता ये है कि जो यहाँ परेशानियाँ उठाएगा, जो यहाँ खुदा के लिए मुश्किलात को बर्दाश्त करेगा उसे वहाँ कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। जो यहाँ तकलीफ़ देगा उसे वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जो यहाँ सब्र करेगा उसे वहाँ दाइमी नेमतों से सरशार किया जाएगा, वहाँ उसके लिए सुख ही सुख होंगे, खुशहाली होगी और नेमतें होंगी, और सबसे बढ़कर ये कि रब उसका उससे राज़ी होगा। लेकिन सब्र के मुख्तलिफ दरजात हैं। एक होता है सब्र महमूद। सब्र महमूद ये कि इंसान लज्जात गुनाह को छोड़ दे, अपने नफ्स को मजबूर करे, अपने नफ्स को इस बात पे आमादा करे कि वो गुनाह की लज्जत की तरफ ना जाए, अपने आप को गुनाह की लज्जतों से दूर कर ले। ये भी सब्र करना है। जाहिर है कि शैतान यही कोशिश करता है कि गुनाहों को अच्छा करके पेश करे, उनको लजीज करके बताए, उन्हें आसान सूरत में जलवानुमा करे। लेकिन वहाँ पे इंसान सब्र करते हुए अपने नफ्स को आमादा करे इस बात पर कि नहीं, अगर हमेशा की नेमतें चाहते हो, अगर रिजवान खुदा चाहते हो तो यहाँ तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। एक होता है गुनाह पर सब्र, कि इंसान सब्र करे और गुनाह के करीब न जाए, गुनाह के ज़रिए हासिल होने वाली आसाइश, गुनाह के ज़रिए से हासिल होने वाला पैसा, गुनाह के बलबोते पर हासिल होने वाली ऐश व इशरत को कबूल ना करे, सब्र करे। ये सब्र का एक मरहला है। दूसरा मरहला यह है कि इंसान इताअत इलाही पे सब्र करे। ज़ाहिर है इताअत इलाही में भी परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं। सुबह नमाज के लिए उठना इतना आसान नहीं है, गर्मियों में रमज़ान के वाजिब रोज़े रखना इतना आसान नहीं है, अपने कमाए हुए माल में से खुम्स और ज़कात अदा करना इतना आसान नहीं है। थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन इंसान सब्र करे इस बुनियाद पे सब्र करे कि आज मैं थोड़ी सी जहमत करूंगा तो कल इसका बहुत बड़ा नतीजा निकलेगा। आज के इस मुख्तसर जहमत का दायमी नेमतों की सूरत में नतीजा निकलेगा, इससे मेरा रब राजी होगा और इससे का फायदा मुझे ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो ये खर्च कर रहे हैं खुदा के नाम पर ये रायगां चला जाए, ये ज़ाया हो जाए। खुदा ज़ाया होने नहीं देता। ज़िंदगी के जो लम्हात खुदा की रात में सर्फ किया जाए, खाल कायनात उनके नतीजे में इंसान की ज़िंदगी में बरकत देता है और इंसान से वो काम कराता है कि जो बग़ैर तोफ़ी के इलाही के मुमकिन ही नहीं है, जो सब्र करने का नतीजा होता है। इससे बढ़कर ये है सब्र जमील, फसबिर सब्रन जमीला। सब्र जमील ये है कि इंसान मुश्किलात के आने से पहले ही अपने आप को काने कर ले, मुतमईन हो जाए कि जो कुछ मुझे पेश आएगा वो हुक्म इलाही से होगा, वो इज़्ने इलाही से होगा, मैं कोई शिकवा नहीं करूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा। यानी रिजन बे कज़ा ही व तस्लीमन ले अम्रे, रज़ा इलाही पे राजी रहना, खुदा ने जो मेरे लिए मुकद्दर बनाया है वही बेहतर होगा। रज़ा इलाही पे राजी रहना ये आला तरीन दर्जा है सब्र का। खुदा रिजवाने इलाही पे बंदे को राजी रहने की तौफीक दे दे, ये सबसे बड़ा दर्जा और कमाल यही है। और आइमा अलैहिस्सलाम खुसूसन सैयद शोदा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम उसी मर्तबे पर फाइज थे, अपना सब कुछ खुदा के नाम पे कुर्बान कर रहे थे, बेटे बेटियां भतीजे पूरा खानदान असहाब अंसार सब कुछ दे दिया, अपना सर भी दे दिया। रजन बे कज़ा ही व तस्लीमन ले अम्र ही कहते हुए, सब्र का आला तरीन रुतबा है। लेकिन यहां पर जो एक इश्तबाह किया जाता है वो ये है कि कहा जाता है सब्र करें, और सब्र की माना फिर ये ली जाती है कि इंसान रोए नहीं, गिरिया ना करे। जी नहीं, सब्र की ये माना नहीं है। रोना इंसान की फितरत में है। जिस तरह खालिक कायनात ने खुशी पे इंसान को तबस्सुम करने और मुस्कुराने की चीज़ अता की, इसी तरह गम और दुख में इंसान का गमगीन होना और दुखी हो जाना, आंखों में आंसुओं का आ जाना फितरी सी बात है, तभी सी बात है। इसके नमूने हैं खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। जब आपके फर्जंद जनाब इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे। कोई कहने लगा, या रसूल्ला आप तो हमें कहते हैं कि सब्र करें, तो फरमाया हाँ, दिल दुखेगा, आंखों में आंसू आएंगे, ये सब्र के मुखालिफ नहीं है। सब्र के मुखालिफ ये है कि हम खुदा से शिकवा और शिकायत करें, खुदा की तकदीर पे राजी ना रहें, खुदा से गिला और शिकवा करें, खुदाया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ये क्यों छीन ली, मेरा बेटा मुझसे क्यों जुदा कर दिया। तकदीर इलाही पे राजी ना कहना, गिला और शिकवा करना, ये सब्र के मुनाफी है। सिर्फ रोना सब्र के मुनाफी होता तो अंबिया रोते ही नहीं। मगर क्या कुरान ये नहीं बताता कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की फिराक में कितने साल रोए, इतना रोए कि वबयज्जत आईनाहु मिनल हुज़्न, इस गम की बुनियाद पर उनकी आंखें सफेद हो गईं, उनकी आंखों की बीनाई चली गई। अगर रोना और गिरिया करना सब्र के मुनाफी होता तो कभी अंबिया रोते ही नहीं। मुगालता करते हैं वो जो कहते हैं कि सब्र की इतनी फजीलत है, लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि रोना नहीं चाहिए, रोना फितरी बात है। हाँ, शिकवा और शिकायत खुदा से ये नहीं करना चाहिए, ये ईमान के मुनाफी है। लिहाजा अहले ईमान हमेशा खुदा से सब्र की दुआ करते रहते हैं। जब भी किसी मार्के पर होते हैं, जब भी किसी मकसद को हासिल करने के लिए, यहाँ तक कि जंग के मैदान में भी होते हैं, तो खुदा से तौफीक तलब करते हैं। और खुदा ने ये फरमाया है कि वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है जो मुश्किलात पे सब्र करते हैं। दीन खुदा की बढ़ाई के लिए, सरबुलंदी के लिए, इज्जत और आबरू के लिए कुर्बानियां देते हैं, सब्र करते हैं। हिज़्बुल्लाह की, अल्लाह के लश्कर की, औलिया इलाही की और खालिस मुखलिस मोमिनीन की निशानी यही है, जैसा कि कुरान की ज़बानी सुनते हैं हम, के लम्मा बरज़ू लजालूत व जुनूद, जब जनाब तालूत लश्कर लेके निकले जालूत के मुकाबले में पहुँचे, कितना अजीम लश्कर है उनके पास, उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, अपने हौसले पस्त होने नहीं दिए, खुदा पे तवक्कुल और भरोसा करते हुए ये दुआ की, रब्बना अफ़रिग अलैना सब्रा, बारे इलाहा हमें सब्र अता फरमा, व सब्बित अक़दामना, हमें इस्तकामत अता फरमा, सुबात कदम अता फरमा, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, काफिरीन के मुकाबले में हमें कामयाबी अता फरमा। यानि अहले ईमान अपना अमल अंजाम दे देते हैं, अपनी जिम्मेदारी पे अमल कर देते हैं, मैदान में कदम रख देते हैं, फिर जाके बरजू के बाद, मैदान में आने के बाद फिर खुदा से दुआ करते हैं। इन आयात का नतीजा यही बनता है कि अमल करना तुम्हारा काम है, कोशिश करना तुम्हारा काम है, मैदान में आना तुम्हारा काम है, तलवार उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम है, कामयाबी से हमगिनार करना खुदा का काम है, तौफीक देना खुदा का काम है। तुम अपना काम करो, खुदा का काम खुदा के हवाले कर दो, खुदा अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देगा। जहाँ जहाँ इंसान शिकस्त खाता है, वहाँ वहाँ दर हकीकत उसने अपनी ज़िम्मेदारी में कोताही की होती है। अगर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को बतौर अहसन अंजाम दे, तो खुदा के लुत्फ़ और करम में कोई कमी नहीं है, उसके यहाँ कोई बुखल नहीं है। अगर कमियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, नक्स होते हैं, तो हमारी तरफ से होते हैं। ये ज़िंदगी का दर्स है कि ज़िंदगी के तमाम मरहलात में, तमाम मराहिल में इंसान सब्र के ज़रिए से कामयाबियां हासिल कर सकता है, सब्र के ज़रिए से मुश्किलात पे काबू पा सकता है। मुश्किलात चंद दिनों के लिए होती हैं, इंसान को मायूस न बना दे, रहमत खुदा से दूर न बना दे, खुदा से बदबीन न बना दे। बहुत कमज़ोर ईमान वाले होते हैं वो लोग, जो मामूली मामूली मुश्किलात की वजह से खुदा से बदज़न हो जाते हैं, गिला शिकवा करने लगते हैं, उन्हें ये महसूस होने लगता है कि गोया खुदा ही नहीं है, हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सब कुछ खुदा के खाते में डाल देते हैं। तमाम जाबिर और ज़ालिम हुक्मरानों के काम, तमाम ज़ालिम अफराद और फासिक अफराद के काम खुदा के ज़िम्मे डाल देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मगर कुरान ये नहीं कह रहा कि कितने ही अम्बिया ऐसे हैं जिनके साथ मुखलिस लोग शहीद हुए। अम्बिया की क्या तकसीर थी, उनका क्या गुनाह था, वो तो पाक थे, वो मासूम थे। ऐसा नहीं है कि इंसान को जो भी परेशानी और मुश्किल आए तो उसमें उसका कसूर होता है। गरचे कुरान ये कहता है कभी हमारे किए हुए अमाल का नतीजा होता है, कभी अजाब होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि इम्तिहान हो। ये हासिल होने वाली परेशानियाँ और पेश आने वाली मुश्किलात इम्तिहान होती हैं, इंसान सब्र के साथ, हौसले के साथ, अज़्म के साथ इनका मुकाबला करे और खुदा से दुआ करे कि खुदा उसे सब्र और हौसले की तौफीक अता फरमाए। और मैं तो ये कहता रहता हूँ कि खुदा अपने औलिया की मदद करता है। बस औकात ये होता है कि हम मदद का गलत नतीजा निकालते हैं, गलत मतलब निकालते हैं। हम ये समझते हैं खुदा की मदद सिर्फ यही है कि वो गैबी कुव्वतों को भेज दे और एक लम्हे में हमें कामयाबी मिल जाए। खर्ची ये भी एक किस्म की मदद है, लेकिन इससे बढ़कर मदद ये होती है खुदावंद मुताल की तरफ से कि खालिक कायनात इंसान मोमिन और मुजाहिद को हौसला और आज़म अता करता है और सब्र अता करता है। सब्र की सबसे बड़ी दास्तान है करबला। कितनी मदद की है खालिक कायनात ने हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की, एक लम्हे के लिए भी उसके कदम डगमगाते नहीं हैं। कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जा रही हैं, एक लम्हे के लिए कोई इज़्तिराब नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई पशेमानी नहीं है। मारने वाले डर रहे हैं, खौफ में मुब्तला हैं, मरने वालों को कोई परेशानी नहीं है। ये खुदा की मदद है। खुदा इस तरह मदद करता है कि उनके हौसलों को बुलंद कर देता है। ये सब्र और हौसला है जो इंसान को कामयाबी से हमकिनार करता है। सब्र के बगैर ईमान का और कामयाबी का कोई तसव्वुर नहीं है। हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी की इन मुश्किलात पे सब्र करें और खालिक कायनात से सब्र की तौफीक और कामयाबी की दुआ करें। दुआ है कि खालिक कायनात हम सबको ज़िंदगी के तमाम मराहिल में, तमाम इम्तिहानात में सब्र और हौसले के साथ इनको गुजारने और इनमें कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।